الطيبين الطاهرين المعصومين نبي ما بقية الله في الرحيم وخير أرواح العالمين لتراب مقتله في الأرض واللعنة الدائمة على أعداء المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبع العظيم صدق الله العظيم. Today, inshallah, from today we'll be starting Surah Naba, and from tomorrow, which is the tafsir, today we'll be doing the importance of Surah Naba. There is a whole chapter in the Shia tafsir book which is known to be Fawaid al-Khassa. In English, translates as the specified benefits of each and every surah and every ayat. Ayam Ali Musalam had mentioned there is a whole chapter called Fawaid al-Khassa, the specified benefits. For example, for Surah Fatiha, the special benefits are that Imam Ali Islam says that if a person recites Surah Fatiha for a person who is sick, then he will be cured. 40 times if he recites for a person who is not well, do wudu, face the qibla, and recite 40 times Surah Fatiha. And some other traditions mention that Imam Ali Islam said that if you recite Surah Fatiha 70 times for someone, then do not be surprised if a deceased person wakes up. معظم فرماتے ہیں کہ اگر مردہ زندہ ہو جائے 70 مردہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے تو تعجب نہ کریں.
انہیں
کہا جاتا ہے فوائد خاصہ. These are known to be the specified benefits of each and every surah. Now, the Holy Quran has 114 surah. All of those surahs have specified benefits. And then many of the verses of the Holy Quran have specified benefits. Now, if you come across, for example, some of the other verses, like Ayatul Kursi. Ayatul Kursi is, like for example, there are traditions to mention that Surah Fatiha is the best surah of the Holy Quran. The best surah of the Holy Quran is Surah Fatiha. And the best ayat in the Holy Quran is Ayatul Kursi. And there is, in some books, they mention that the Holy Quran is like a flower. And the center of that flower is Ayatul Kursi. So Ayatul Kursi itself has many, many benefits, and the adad of Ayatul Kursi is, for example, 313, and some have mentioned 290. So these are the benefits of Ayatul Kursi that if you recite it, you know, the number of that surah, if you recite it that number that many times, then you will see the consequences and the results of that. Now Ayatul Kursi is extremely beneficial, and if you recite it for something, yeah, if you have a great adventure, if you have something special that you want to recite Ayatul Kursi for, then 313 times for anything, Ayatul Kursi is extremely beneficial. If you want to start any business, something like that. So do wudu, sit alone, and 313 times Ayatul Kursi. So every surah has its own benefits. And many, many ayats of the Holy Quran have extremely high benefits. The ulama have mentioned that if you recite Surah Ikhlas many times, the people who recite Surah Qul Huwallahu Ahad, Surah Ikhlas a lot, then there are specified benefits of Surah Ikhlas. For example, Salah. For example, the people who, you know, some of the great Urafa, the mystics and the scholars have mentioned that if you recite Surah Ikhlas a lot, especially 1,000 times a day, and some have mentioned 10,000 times a day, but 1,000 times every day, then it has benefits in acquainting, getting to the benefit or the level of Tayyul Al, which is shortening the earth hole. You know the verses that I've mentioned previously about that you can speak to the deceased and you can shorten the earth with the Quran. One of the benefits of Surah Ikhlas is that it is very beneficial for a person to provide the traveling benefits. He was asked that, do you have Tayyulas? He said, if a person continuously recites Surah Ikhlas, then Allah will provide for him the means of travels. For example, if you leave the house, Allah will offer you a lift, or you will always reach in time. So Surah Ikhlas has many, many benefits. And one of the benefits of Surah Ikhlas, according to Amali of Shaykh Tusi, is that the Holy Prophet mentioned that when Hazrat Sa'd ibn Mu'adh passed away, the Holy Prophet attended his funeral with barefoot, you know, barefoot. And when he came, the people said, Ya Rasulullah, why have you come barefoot? He said, because there are 70,000 angels in his janazah. They said, Ya Rasulullah, why so many angels came? He said, because Sa'ad used to recite Surah Ikhlas continuously all day long. So sometimes you have to count certain things and do it according to the numbers. And there are some adhkar that you should do countless, meaning you should not even keep a count that, okay, I'm going to do it 100 times, 200 times, 300 times. No, you do it over 1,000 times, 2,000 times, and you don't keep a count. You do it numerical times, and you do it, you know, uncountable, you know, countless times every day. And that has special benefits, especially for Surah Ikhlas. So far people with me? So there are specified benefits. These are known to be fawaid khas of each and every surah. Now, today I wanted to talk about the importance of Surah Naba, because from tomorrow we'll be talking about the tafsir of each and every ayat of Surah Naba. And there are 40 verses, short verses of Surah Naba. So you should not be frightened that there will be 40 verses. No, very short verses. Amma yatasa'alun is one verse. Anil Naba iladhi. So slowly the verses are very small, except for the last few verses which are long. And the other verses are very short. So some days, tomorrow we'll do 2 verses, and the day after tomorrow, inshallah, we'll do probably 3. Likewise, 2-3 verses every day. And that way we'll have the whole of the surah finished in the month of Ramadan, inshallah. Now, what are the specified benefits of Surah Naba? Surah Amma Yasa'alu. I am a Muslim, I've mentioned Imam Jafar Sadiq. That a person who intends to go for Hajj or Ziyarat, and he has no means of Hajj and Ziyarat. The person who has no istita'at, has no financial means of Hajj or Ziyarat, then they should recite Surah Naba. And there are hadith that mention that if you recite it for 40 days every morning, after Fajr, 40 days continuously, some say 40 Fridays. So there are all of these benefits that I've mentioned for Surah Naba. So if a person recites Surah Naba for 40 days continuously, then inshallah that year they will make it for Hajj. And if they intend it for Karbala, then inshallah that year they will go for Karbala. So if you recite Surah Naba, the surah that we will be in tafsir of, Surah Amma Yatasa'alun, Surah Naba, inshallah, then you will get to go to Hajj or Ziyarat if you intend it for whichever you intend for. Inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala will provide you the means to attend Ziyarat. यहाँ तक कि अगर रोटी खाने से पहले भूल गए हो तो अगर वसत में पहुंच गए हो तो वहीं पे पढ़ लो बिस्मिल्लाह। हत्ता अगर खाने के आखिर में याद है तो बिस्मिल्लाह वहीं पे पढ़ लो, उसके कुछ ना कुछ फायदे हैं। देर से पढ़ोगे कुछ ना कुछ फायदा जरूर पहुंचेगा बिस्मिल्लाह। यहाँ तक कि मैं अब यहाँ पे एक जुमला कहने वाला हूँ, सब मैं उर्दू में कहूंगा, इंग्लिश में नहीं कहूंगा इसको, कि ये जो कुरान कहते हैं ना, हिल्ला में गैर अल्लाह पे, यानी जो अल्लाह के नाम पे ज़िबह ना किया जाए जानवर वो हराम है, उसको नहीं खा सकते। कुरान कहते हैं वमा अहिल्ला गैर अल्लाह पे, जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए जानवर ज़िबह किया जाए उसको नहीं खा सकते। शेख सानी कहते थे कि अगर कोई आलम दीन बनना चाहता है तो अगर अल्लाह का नाम लिए बगैर खाना खा रहा है तो इसने उसको हलाल नहीं किया अपने लिए। ये वमा अहिल्ला गैर अल्लाह, ये अल्लाह के नाम पे ज़िबह नहीं है, दबा होके आया सब कुछ है। वो कहते थे लेकिन तू किस बात का आने में दीन है कि तू बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता खाने से पहले। वो तलबा के लिए कहते थे कि तालिबे तब तक आलिम नहीं, आलिम तब तक आलिम, इसलिए मैंने इंग्लिश में नहीं कहा उर्दू में कहा ताकि नौजवान ज्यादा डरना जाए, कहते नहीं हराम खाने खाना खाने बात सख्त है, लेकिन हम जब तक कम बात ना सुने तो हमें असर नहीं होता। मैंने देखा है, मैं अपने नफ्स की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, आपको बहुत देखो मैं अपने से मुखातिब हूँ। अगर कितनी आदत बना लें ये छोटी छोटी आयात को छोटा ना समझे, ये छोटी छोटी आयात इतना असर रखती हैं कि इसका अगर असर हमें अपने नफ्स पे नजर आने लगे तो हम अपने बाकायदा कुरान को हमेशा सर पे बांध के चलने लगे। जब रोम के बादशाह ने लिखा, वक्त हो गया, मैं अब 3-4 मिनट रह गए, रोम के बादशाह ने लिखा अमीर उम्मीनीन को, कहा यार मुझे माइग्रेन जो कहते ना बहुत बेशदीद दर्द होता सर में, माइग्रेन वगैरह, अब कहा कि यार मुझे शदीद दर्द होता सर, क्या करूं। तो आपने अब कहा कि अभी रोम का बादशाह है तो काफिर, लेकिन मेरी तरफ रुजू किया है, मुश्किल कुशा कहते ही उसे जो फर्क न रखे। तो कहा कि जब भी तुम्हें दर्द हुआ करे तो ये टोपी पहन लिया करो, ये वो जो उर्दू वाले नहीं है पहुंच गए। तो कहा भी ये टोपी पहन लिया करो, वो गए अपने, जब भी दर्द होता था सभी टोपी पहन लेते, कहा बिल्कुल ठीक हो, ताज उतारना पड़ता था और टोपी पहननी पड़ती थी। मौलाना का कुछ देर के लिए ताज उतारेगा तो वैसे भी ताज का वजन बहुत ज्यादा होता है, और ताज का वजन मैं दुनियावी लिहाज से बात नहीं कर रहा हूं, सोने का तो वजन ज्यादा है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी उम्मत की उसके सर पे, तो उसका क्या है इस श्लोक के अंदर, इस हेड में क्या है जो अली ने भेज दिया कि जब भी बहता हूं ठीक हो जाता हूं? उन्होंने कहा इसको खोल के देखना पड़ेगा। उन्होंने काटना पीटना शुरू किया, देखा तो उसके अंदर एक कागज का उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक बिस्मिल्लाह का संकेत था कि अगर बाय बिस्मिल्लाह के हाथों लिख दिया जाए तो उसका असर यह होता कि माइग्रेन का दर्द भी ठीक हो जाता है। और क्या, तो इसको हकीर न समझे, इन आयात को अपने पास बांध के रखें ताकि इसका असर हो और नजर आए। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين پروردگار سب کی عقبت خیر فرما ہمارے جانے سبھی رب العالمین معاف فرما ہمیں قران اہل بیت سے وابستگی کی توفیق عنایت فرما پروردگار زندگی میں میں حسین کی زیارت نصیب فرما آخرت میں حسین کی شفاعت نصیب فرما پروردگار جتنے افراد نے التماس سے دعا کی سب کی دعا کو مستجاب فرما پروردگار جتنے ان کے اولاد سب کو اولاد عنایت فرما مفروضوں کے قرضوں کو ادا فرما اس مرکز کو زندگی میں راجو کرتے عنایت فرما پروردگار جتنے مؤمن موجود ہیں سب کی دعا کو مستجاب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين. الفاتحه قبلها السلام. آپ لوگ انشاءاللہ جی کے اور گیٹ ریڈی فار ہاف پلیز ساتھ کا تعمیل ہے